नमस्कार भारत, आज है 8 अगस्त दिन सोमवार और मैं हूं अमरेश द्विवेदी। तुर्की में पिछले महीने हुए तख्तापलट के खिलाफ हुई विशाल रैली, राष्ट्रपति अर्दोगान ने कहा षड्यंत्र में शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर कहा नकली गौरक्षकों के खिलाफ कठोर कार्रवाई हो।
मैं सरकारों को कहना चाहता हूं कि आप भी ऐसे नकली गौरक्षकों की छानबीन कीजिए, उन पर कठोर कार्रवाई कीजिए।
कर्नाटक में विश्व हिंदू परिषद से जुड़े एक संगठन ने प्रधानमंत्री से गौ हत्या रोकने के लिए पूरे देश में एक समान कानून की मांग की। भारतीय महिला तीरंदाजी टीम रियो ओलंपिक से हुई बाहर, सुनिएगा साप्ताहिक स्तंभ खेल और खिलाड़ी भी। लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार दिलनवाज पाशा से। तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयप अर्दोगान ने इस्तांबुल में 10 लाख से अधिक लोगों की रैली को संबोधित किया है। ये रैली बीते महीने हुए नाकाम तख्तापलट के विरोध में आयोजित की गई थी। अपने भाषण में अर्दोगान ने कहा कि यदि देश की संसद समर्थन देगी तो वो मौत की सजा को फिर से बहाल कर देंगे। वहीं जर्मनी ने कहा है कि यदि तुर्की मौत की सजा को बहाल करता है तो यूरोपीय संघ में शामिल होने की उसकी उम्मीदें समाप्त हो जाएंगी। अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति ने अगले महीने रियो में होने वाले पैरालंपिक खेलों में रूस के शामिल होने पर प्रतिबंध लगा दिया है। ऐसा रूस पर सरकार समर्थित डोपिंग कार्यक्रम चलाने के आरोपों के बाद किया गया है। रूस ने पैरालंपिक समिति के फैसले की कड़ी आलोचना की है। देश के विदेश मंत्रालय ने प्रतिबंध को अमानवीय करार देते हुए इसे मानवाधिकारों का घोर उल्लंघन करार दिया है। रूस समिति के फैसले के खिलाफ अपील भी दायर करेगा। रूस के खेल मंत्री विताली मुत्को ने कहा, सरकार किसी भी तरह से पैरालंपिक समिति का समर्थन नहीं करेगी और मुझे लगता है कि जल्द से जल्द लुसाने की अदालत में इस निर्णय के खिलाफ अपील दायर की जाएगी। मैक्सिको के अधिकारियों का कहना है कि उष्णकटिबंधीय तूफान अर्ल के कारण आई बाढ़ और भूस्खलन से कम 38 लोगों की मौत हुई है। तूफान शनिवार को देश के पूर्वी तटों से टकराया है। ज्यादातर लोग प्युएब्ला प्रांत और नजदीकी वेराक्रूज प्रांत के दूरस्थ गांवों में हुए भूस्खलन में घरों के दब जाने के कारण मारे गए हैं। कैरिबियाई देशों में तबाही मचाने के बाद अर्ल तूफान मैक्सिको के तटों पर उच्च तीव्रता के साथ पहुंचा था। हालांकि उत्तरी दिशा में बढ़ते हुए ये कमजोर पड़ गया था, लेकिन तूफान के कारण हुई भारी बारिश से नदियां उफान पर हैं और पूर्वी और मध्य मैक्सिको के कई इलाकों में भूस्खलन हुआ है। सीरिया के एलेपो में सरकारी सेना की घेराबंदी तोड़ने के बाद विद्रोही गुट सीरियाई सेना की भारी बमबारी का सामना कर रहे हैं। इससे पहले विद्रोही सेना की घेराबंदी तोड़कर अपने नियंत्रण वाले इलाकों में राहत सामग्री ले जाने में कामयाब हो गए थे। लड़ाई पर नजर रखने वाले विशेषज्ञों का कहना है कि सेना विद्रोहियों को और बढ़त लेने से रोकने के लिए फिर से इकट्ठा हो रही है। माली में संयुक्त राष्ट्र के शांति बलों का कहना है कि उसका एक वाहन धमाके का शिकार हुआ है, जिसमें एक सैनिक की मौत हुई है और 4 अन्य घायल हुए हैं। माली संयुक्त राष्ट्र शांति बलों के लिए सबसे घातक मिशन साबित हो रहा है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल की पुलिस का कहना है कि 2 विदेशी नागरिक अगवा किए गए हैं। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक काबुल के अमरीकी विश्वविद्यालय से एक अमरीकी और एक ऑस्ट्रेलियाई प्रोफेसर को अगवा किया गया है। बीबीसी समाचार।
आप सुन रहे हैं नमस्कार भारत रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और मोबाइल पर लाइव, और मैं हूं अमरेश द्विवेदी। तुर्की के इस्तांबुल शहर में राष्ट्रपति अर्दोगान के समर्थन और पिछले महीने हुए नाकाम तख्तापलट के विरोध में एक विशाल रैली हुई है। रैली में अपने लाखों समर्थकों के बीच राष्ट्रपति अर्दोगान ने कहा कि अगर संसद और जनता साथ दे तो वो मृत्युदंड के प्रावधान की वापसी कर सकते हैं। इस मौके पर अर्दोगान ने यह भी कहा कि तख्तापलट में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और सरकार अमरीका में रहने वाले धर्मगुरु फतेहुल्ला गुलेन के समर्थकों का देश से सफाया करेगी। पूरा ब्यौरा सुनिए दिलनवाज पाशा से।
तुर्की में बीते महीने हुए तख्तापलट के प्रयास के विरोध में इस्तांबुल में आयोजित एक रैली में 10 लाख से ज्यादा लोग शामिल हुए हैं। राष्ट्रपति अर्दवान समेत विपक्ष के नेताओं ने इस रैली को संबोधित किया। नाकाम तख्ता पलट के बाद राष्ट्रपति अर्दवान बेहद ताकतवर होकर उभरे हैं। अपने भाषण में राष्ट्रपति अर्दवान ने तुर्की में फांसी की सजा को फिर से बहाल किए जाने का संकेत भी दिया। उन्होंने कहा,
Efendim Avrupa Birliği'nde idam yokmuş, konseyde yokmuş, şurada yokmuş, burada yokmuş.
वो कहते हैं कि यूरोपीय संघ या यूरोपीय परिषद या यहाँ वहाँ मौत की सजा नहीं है। ये अमेरिका में है, जापान में है, चीन में है और दुनिया भर के ज्यादातर देशों में मौत की सजा है, तो उन्हें इसकी अनुमति है। हमारे यहाँ भी 1984 तक मौत की सजा थी। संप्रभुता लोगों के लिए है, इसलिए अगर देश के लोग ये फैसला लेते हैं तो मैं निश्चिंत हूँ कि राजनीतिक पार्टियां इसे स्वीकार करेंगी। तुर्की में 15 जुलाई को हुए तख्तापलट के प्रयास से जुड़ी घटनाओं में 270 से अधिक लोग मारे गए थे। तख्तापलट नाकाम होने के बाद सरकार ने इसमें शामिल लोगों पर सख्त कार्रवाइयां की हैं। रैली में शामिल लोगों का कहना था कि वो लोकतंत्र के समर्थन में आए हैं। इस्तांबुल की रैली में शामिल एक व्यक्ति फरहाद आरसुमेन कहते हैं, उस रात के बाद से हम तुर्की के लोग सहमे हुए हैं, लेकिन हमें अपने लोगों में विश्वास है, अपने देश में विश्वास है और अपने लोकतंत्र में विश्वास है। हम अब भी रातों को सड़कों पर निकलकर अपने लोकतंत्र की रक्षा कर रहे हैं। तुर्की के लोकतंत्र के समर्थन में हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और बैठकें कर रहे हैं। मुझे लगता है कि उस रात के बाद से तुर्की एक राष्ट्र के रूप में पहले से ज़्यादा एकजुट और मजबूत है। इस रैली में तुर्की की विपक्षी पार्टियों और उनके समर्थक भी शामिल हुए। हालांकि रैली में कुर्द समूहों को आमंत्रित नहीं किया गया था। तुर्की की मुख्य विपक्षी पार्टी के नेता कमाल किलिकदारोग्लू ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि 15 जुलाई के बाद का तुर्की एक नया देश है। तुर्की तख्तापलट के प्रयास के पीछे अमरीका में रह रहे धर्मगुरु फेतुल्लाह गुलेन का हाथ मान रहा है, जबकि गुलेन तख्तापलट की कोशिशों में अपनी कोई भी भूमिका होने से इनकार करते रहे हैं। 15 जुलाई के बाद से गुलेन के हजारों समर्थकों को हिरासत में लिया गया है और सरकारी नौकरियों से निकाल दिया गया है। रैली में बोलते हुए प्रधानमंत्री बिनाली इल्द्रिम ने कहा कि गुलेन को तुर्की लाया जाएगा और तख्तापलट के लिए उन्हें सजा दी जाएगी। वहीं तुर्की की सेना के प्रमुख हुलूसी अकार ने भी कहा कि तख्तापलट में शामिल होने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस्तांबुल की रैली में 10 लाख से अधिक लोगों का शामिल होना बताता है कि इस मुश्किल घड़ी में देश अपने नेता के साथ खड़ा है।
ब्यौरा सुना रहे थे दिलनवाज पाशा। इस बीच जर्मनी ने कहा है कि अगर तुर्की मौत की सजा फिर से बहाल करता है तो यूरोपीय संघ में शामिल होने की उसकी उम्मीदें पूरी नहीं हो सकेंगी।
बीबीसी हिंदी रेडियो पर बुधवार को दुनिया जहां
अंतर्राष्ट्रीय खबरों के पीछे का सच,
शुक्रवार को इतिहास की परतें खोलती विवेचना
और शनिवार को आपकी आवाज इंडिया बोल।
हाल में दलित समुदाय के लोगों पर हुए हमलों पर चिंता जताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर कहा है कि इसके लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है। हैदराबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ लोग गोरक्षा के नाम पर समाज की शांति भंग करना चाहते हैं। उन्होंने हिंसा करने वालों से कहा कि अगर उन्हें हमला ही करना है तो उन पर करें, न कि दलित समुदाय के लोगों पर। प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्षियों से भी अपील की कि वे दलितों के मुद्दे पर राजनीति न करें।
मैं सभी देशवासियों को कहना चाहता हूं, ये जो नकली गौरक्षक है, इनको गाय से लेना देना नहीं है, वे समाज में तनाव पैदा करना चाहते हैं। और इसलिए मैं सरकारों को कहना चाहता हूं कि आप भी ऐसे नकली गौरक्षकों की छानबीन कीजिए, उन पर कठोर कार्रवाई कीजिए।
क्या कारण है कि हम हमारे दलित भाइयों को प्रताड़ित करें? क्या हक मिला है आपको? क्या देश में समाज के इन वर्गों को जो सदियों से झेलते आए हैं, क्या आप भी उनको झेलने के लिए मजबूर किया जाएगा?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान से दलितों के प्रति उनकी चिंता जाहिर होती है या फिर उनकी नजर कहीं और है? यही समझने के लिए हमारे सहयोगी संदीप सोनी ने वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक उर्मिलेश से बात की।
मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी की जो चिंता है उसमें जेन्युइननेस की कमी है, और मैं ये बात सिर्फ एक वाक्य नहीं कह रहा हूँ बल्कि इसके पीछे फैक्ट्स हैं जिनकी रोशनी में मैं ये बात कह रहा हूँ। चूंकि इस समय उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, जहाँ चुनाव होने हैं अगले वर्ष के शुरू में, जहाँ दलित बड़ी तादाद में है और दलितों के बीच इन दिनों आप एक खास ढंग की एकजुटता दिखाई दे रही है, जो उनके ऊपर लगातार हमले हुए हैं, चाहे वो गुजरात में हुए हों या दूसरे इलाकों में हुए हों, उसको लेकर एक प्रतिकार है। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से जुड़े या संघ परिवार से जुड़े जो संगठन हैं, खासकर गौरक्षक दल है, बजरंग दल है, इस तरह के संगठनों को वो आतताई के तौर पे, हमलावर के तौर पे, निशाना साधने वाले के तौर पे वो आइडेंटिफाई कर चुके हैं दलित। तो नेचुरली प्रधानमंत्री जी की जो चिंता दिखाई पड़ी वहां हैदराबाद में, वो जेन्युइन नहीं मानी जाएगी, क्योंकि उनको लगता है कि अगर हम इस तरह की बात नहीं कहेंगे अभी तो शायद उत्तर प्रदेश में जो दलित एकजुटता है वो और ज्यादा बड़ी बनेगी। अभी पता चला कि बीजेपी की तरफ से एक अभियान चलाया जा रहा था जिसमें दलितों को मोबिलाइज करना था, लेकिन जो व्यापक दलित समुदाय है उसकी गोलबंदी के आगे बीजेपी का जो दलित जुटाओ अभियान था वो फीका पड़ गया और उसको बल्कि रद्द करना पड़ा एक तरह से कई जगह।
लगातार दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कथित गौरक्षकों का मुद्दा भी उठाया, उस दलितों का जिक्र भी हो रहा है। उर्मिलेश जी, आपको नहीं लगता कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मन में, प्रधानमंत्री मोदी के मन में ये चिंता है दलित और मुसलमान कहीं हाथ ना मिला लें, एक साथ ना हो जाएं, इससे आने वाले चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को बड़ी मुश्किल हो सकती है?
बिल्कुल, आपका जो सवाल है बिल्कुल यही, ये बिल्कुल सही बात है, यही चिंता है। और इस चिंता के पीछे बहुत ठोस कारण है, क्योंकि अनेक इलाकों में, चाहे वो दादरी का प्रसंग हो जहां एक बेबस मुसलमान को निशाना बनाया गया था जिसका कोई कसूर नहीं था, ठीक उसी तरह से ऊना में हमने देखा, झारखंड में इसी तरह के उत्पीड़ित समाज के लोगों को निशाना बनाया गया कुछ ही दिन पहले। तो ये जो घटनाक्रम है इससे एक मैसेज गया है पूरे देश में कि जो संघ परिवार से जुड़े संगठन है वो इस तरह का हमला कर रहे हैं और इस तरह की चीजों को जबरन लोगों पर लाद रहे हैं।
आपको लगता है कि दलितों के मानस पटल पर प्रधानमंत्री मोदी की ये शब्द कुछ अंकित होंगे, कुछ साख बदलेगी जैसा उन्होंने बयान दिया है अभी?
प्रधानमंत्री जी जो कह रहे हैं, मैं समझता हूँ कि खासकर अगर गोरक्षा दल, बजरंग दल जैसे संगठनों में इसका असर पड़े तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन अगर वो स्वयं इन संगठनों को नहीं प्रभावित कर पाते तो फिर मैं नहीं समझता कि दलित प्रभावित होगा, क्योंकि दलित आज से नहीं, दो साल की बात नहीं केवल है, भारत में आजादी के बाद से, आजादी से पहले भी यही हालात थे, आजादी के बाद नहीं बदले। वाकई अगर हमदर्दी है तो संघ परिवार के संगठनों को नियंत्रित करें और उनको दलितों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों पर हमलावर होने से रोकें।
ये थे वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश। उधर कर्नाटक में विश्व हिंदू परिषद से जुड़े एक संगठन ने प्रधानमंत्री मोदी से गौहत्या रोकने के लिए पूरे देश में एक समान कानून लागू करने की मांग की है। संगठन ने इस आशय का एक पत्र प्रधानमंत्री को पिछले महीने लिखा था। अब नकली गौरक्षकों के प्रति प्रधानमंत्री के रुख को देखते हुए इसे मीडिया में अब जारी किया गया है। बेंगलुरु से इमरान कुरैशी की रिपोर्ट।
पिछले दो दिनों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अच्छे और बुरे गौरक्षकों की चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि करीब 80% गौरक्षक नकली हैं। इस बीच विश्व हिंदू परिषद से संबंधित कर्नाटका गौशाला फेडरेशन ने प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी लिखकर गौ हत्या के खिलाफ सख्त कानून लाने की मांग की है। कर्नाटका गौशाला फेडरेशन के संयोजक कतील दिनेश पाई ने बीबीसी से बातचीत में कहा,
ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಶ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ದೇಶ, ಆದ್ರಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತರು ಅಂದ್ರೆ 50% ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು
ಜನತಂತ್ರ ಮೇ ಜಬ್ 50% ಲೋಕ ಗೌ ಹತ್ಯಾಕ್ಕೆ ಖಿಲಾಫ್ ಹೈನ್ ತೋ ಉಸ್ ಮಾಂಗ್ ಕೋ ಸರ್ಕಾರ ಕೋ ಪೂರಾ ಕರ್ನಾ ಚಾಹಿಯೆ। इस आस्था को रखते हुए सरकार को यह कानून लाना चाहिए जिससे गौ हत्या के लिए 7 साल की जेल और 50,000 रुपये का जुर्माना लगना चाहिए। ये थे कतील दिनेश पाई के शब्द। दूसरी तरफ कल मैसूर में पुलिस ने कर्नाटका दलित वेलफेयर ट्रस्ट का गौ मास त्यौहार मनाने पर रोक लगा दी। दलित वेलफेयर ट्रस्ट के संयोजक शांत राजू ने बताया,
केंद्र सरकार दलित
हमारा विरोध प्रदर्शन इसलिए था क्योंकि जब से केंद्र में यह सरकार आई है तब से पिछड़े वर्गों, दलित और अल्पसंख्यकों पर कुछ न कुछ रोक लगाती आ रही है। गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक जैसे राज्यों में इस वर्ग के लोगों के खाने पर रोक लगाने की कोशिश की जा रही है। हम जो खाना चाहते हैं उस पर कोई रोक कैसे लगा सकता है, ये तो हमारा हक है। ये थे शांत राजू के शब्द। बहरहाल हमने कर्नाटका गौशाला फेडरेशन के कटिल दिनेश पाई से पूछा कि प्रधानमंत्री के बयान पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है। उन्होंने कहा,
गोरक्षक जॉब अल्ल अथवा गोरक्षकर इंतवरंत संविधान आर्टिकल 51 प्रकार
हमारे नजर में तो गौरक्षक कोई व्यवसाय नहीं है। जो भी हिंदू है वो वो गौरक्षा करेगा। हमारा मानना है कि इस बयान के बजाय प्रधानमंत्री को एक कानून लाना चाहिए। हमारे नज़र में कोई नकली गौरक्षक नहीं आया है। हमारे इलाके में तो लोग गौरक्षा के काम में जान भी दे दी है। ये थे कटील दिनेश पाए के शब्द। दिलचस्प बात यह है कि गौरक्षा मामले में बीजेपी परिवार का ही एक संगठन प्रधानमंत्री के बयान के खिलाफ प्रतिक्रिया दे रहा है। तो सवाल यह उठता है कि क्या प्रधानमंत्री असली गौरक्षक की मांग से सहमत हैं या नहीं। बेंगलुरु से इमरान कुरैशी।
नमस्कार भारत, शॉर्टवेव 31, 25 और 19 मीटर बैंड यानी 9,835, 9,915, 11,995 और 15,510 किलोहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 1,413 किलोहर्ट्ज़ पर।
भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश इकाई की दो दिवसीय कार्यकारिणी की बैठक रविवार को झांसी में संपन्न हो गई। जैसा कि पहले से तय था कि इस बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव में जीतने की रणनीति पर ही खासतौर पर चर्चा होगी, और ऐसा हुआ भी। लेकिन पार्टी में बड़े नेताओं की गैर मौजूदगी भी चर्चा का विषय बनी हुई है। वहीं दूसरी ओर मोदी सरकार में मंत्री अनुप्रिया पटेल ने आरक्षण की समीक्षा की चर्चा शुरू करके भी पार्टी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। एक रिपोर्ट के साथ समीरात्मज मिश्र।
बीजेपी की राज्य कार्यकारिणी की बैठक तीन बार टलने के बाद आखिरकार झांसी में संपन्न हो ही गई। लेकिन जिन वजहों से ये टल रही थी, वे वजहें झांसी में भी साफ दिखाई दी। तमाम केंद्रीय मंत्री, सांसद, विधायक समेत लगभग 500 लोगों ने बैठक में हिस्सा लिया, लेकिन झांसी से बीजेपी की सांसद उमा भारती बैठक से नदारद रहीं। यही नहीं, योगी आदित्यनाथ, विनय कटियार और मेनका गांधी सरीखे नेताओं की गैर मौजूदगी भी लोगों में चर्चा का विषय रही। बहरहाल इन सब के बावजूद कलराज मिश्र, राजनाथ सिंह और प्रदेश अध्यक्ष केशव मौर्य सरीखे नेताओं ने कार्यकर्ताओं में जोश भरा और विधानसभा चुनाव में 2/3 बहुमत हासिल करने का लक्ष्य तय किया। ये लक्ष्य कैसे हासिल होगा, इस सवाल पर केशव प्रसाद मौर्य का कहना था,
जो भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी हुआ और भतीजे का कार्यकाल रहा है, पिछला कार्यकाल बहन जी का, वर्तमान कार्यकाल अखिलेश जी का, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में उत्तर प्रदेश का मतदाता खड़ा है, इसलिए हमको विजय प्राप्त होगी, ऐसा विश्वास रखते हैं।
पार्टी में उद्घाटन भाषण केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्र ने दिया और समापन भाषण राजनाथ सिंह ने। कार्य समिति की बैठक में ऐसी उम्मीद जताई जा रही थी कि यूपी चुनाव में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, इस रहस्य से पर्दा उठ सकता है। लेकिन यह रहस्य अभी भी बना हुआ है, यानी पार्टी नरेंद्र मोदी की उपलब्धियों और उन्हीं के नाम पर फिलहाल ये चुनाव भी लड़ने की तैयारी में है। केशव प्रसाद मौर्य का कहना था कि ये जगह इस फैसले के लिए नहीं थी। पार्टी ने कई तरह के सम्मेलनों के जरिए जनसमर्थन जुटाने की रणनीति बनाई है। इसके अलावा अगस्त महीने में ही 2 चरणों में तिरंगा यात्रा निकालने की योजना बनाई गई है। लेकिन पार्टी के 2/3 बहुमत हासिल करने के लक्ष्य को जानकार गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया के वरिष्ठ पत्रकार सुभाष मिश्र कहते हैं,
इसका कोई मतलब नहीं है। आप हवा में 265 रन घोषित कर दिए, आपके पास न कोई मुद्दा है, आपके पास न कोई चेहरा है, आपके पास न कोई रोडमैप है। आप पार्टी के अंदर अगले और पिछले का युद्ध वैसे ही करना है, तो मुझे नहीं लगता कि ये 265 प्लस का जो उन्होंने नारा दिया है या अपना जो टारगेट सेट किया, ये बहुत व्यवहारिक।
जिस समय झांसी में बीजेपी नेता विधानसभा चुनाव जीतने की रणनीति पर मंथन कर रहे थे, ठीक उसी समय बीजेपी की सहयोगी पार्टी की नेता और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल लखनऊ में आरक्षण की समीक्षा की चर्चा छेड़ रही थी। जानकारों का कहना है कि ये कुछ उसी तरह है जैसे बिहार चुनाव से पहले आरएसएस प्रमुख ने आरक्षण की चर्चा छेड़ी थी। सुभाष मिश्र कहते हैं,
जो भारतीय जनता पार्टी को डैमेज हुआ है हरियाणा से लेके गुजरात में और फिर उत्तर प्रदेश में भी, तो अनुप्रिया पटेल ने तो प्राइम मिनिस्टर मोदी या भारतीय जनता पार्टी के साथ है, तो उस डैमेज कंट्रोल को कम करने की कोशिश की है। लेकिन उस जाने अनजाने में कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी का जो पारंपरिक वोट बैंक है उसको भी हिट कर दिया है।
बहरहाल बीजेपी ने चुनावी एजेंडा, मुख्यमंत्री का चेहरा जैसे मुद्दे भले ही तय न किए हों, लेकिन लक्ष्य अपना जरूर तय कर लिया है। जानकारों का ये भी कहना है कि पिछले कुछ दिनों से कई मुद्दों पर भले ही पार्टी की किरकिरी हुई हो, लेकिन उत्तर प्रदेश विधानसभा में सीटों का लक्ष्य उसका बढ़ता ही जा रहा है। अब चुनाव बाद पार्टी लक्ष्य से आगे या पीछे कहां रहती है, ये देखने वाली बात होगी। समीरात्मज मिश्र, BBC लखनऊ।
और वक्त है अखबारों की समीक्षा का। मैं देख सकता हूं दिलनवाज पाशा तमाम अखबार, इकोनॉमिक टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदुस्तान और बहुत सारे अखबार लेकर स्टूडियो में बैठे हैं। और दिलनवाज, हिंदुस्तान में जो मैं शीर्षक देख पा रहा हूँ, दलितों को नहीं मुझे गोली मार दें, जिस खबर पर हमने अभी चर्चा की।
जी, ये शीर्षक सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं, अखबार में ही नहीं, सारे अखबारों के पहले पन्ने पर है। नरेंद्र मोदी ने लगातार दूसरे दिन दलितों और गोरक्षकों पर बयान दिया है, तो जाहिर सी बात है सभी अखबारों ने इसे कवर किया है। इसके अलावा कई खबरें हैं जिनका मैं जिक्र करना चाहूँगा। केंद्र सरकार के जितने भी रिटायर्ड कर्मचारी हैं उन्हें अब कम से कम 9,000 रुपये की पेंशन मिलेगी, ये खबर लगभग सभी अखबारों के पहले पन्ने पर है। इसके अलावा विजय माल्या से जुड़ी करीब 6,000 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क करने की तैयारी प्रवर्तन निदेशालय कर रहा है, ये खबर भी अलग अलग अखबारों में है। एक खास खबर द हिंदू में है, जिस जो ये कर्नाटक के यादगीर जिले से जुड़ी हुई है, थोड़ी रोचक खबर है। यहाँ कल नागपंचमी के दिन बिच्छुओं का मेला लगा। अच्छा। और हैरत की बात यह है कि मेले में शामिल लोगों ने बिच्छू को अपने हाथों में लिया, उनसे खेले और रिपोर्ट के मुताबिक किसी को काटा नहीं। ये अलग बात है कि स्वास्थ्य विभाग ने वहां पर डॉक्टरों का विशेष इंतजाम कर रखा था। दिल्ली में रोजाना 4 बलात्कार होते हैं, ये भारत टाइम्स अपने एक शीर्षक में बता रहा है। इस रिपोर्ट के मुताबिक 2012 से लेकर 2015 तक के आंकड़े दिल्ली पुलिस ने जारी किए हैं, जिसके मुताबिक रोजाना कम से कम 4 महिलाओं के साथ दिल्ली में बलात्कार होता है और 9 महिलाओं के साथ बदसलूकी या छेड़छाड़ होती है। जिक्र करेंगे नई दुनिया की एक खबर का, जिसमें 12 साल पहले लापता हुए एक नौसैनिक की बेटी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कहा है, मोदी जी आप बड़े आदमी हैं, मेरे पापा को खोज दीजिए। तो ये एक खबर आज के नई दुनिया में है,
काफी भावनात्मक खबर है ये।
जी, और एक और खबर है इसी अखबार में, जिसमें मध्य प्रदेश की एक खबर है, जहां एक परिवार को बंधक बनाकर 25 लाख रुपए लूट लिए गए और परिवार के साथ बहुत ज़्यादा मारपीट की गई। स्थानीय आपराधिक खबर है, लेकिन इसको पहले पन्ने पर जगह दी है अखबार ने। हिंदुस्तान टाइम्स की एक और खबर मेरा ध्यान खींच रही है, जिसके मुताबिक इस्लामिक स्टेट से जुड़ी एक संदिग्ध जो भारतीय पुलिस की हिरासत में आई हैं, उन्होंने जाँच के दौरान कहा है कि केरल में एक कैंप लगा था इस्लामिक स्टेट का, जिसमें कम से कम 40 युवाओं का प्रशिक्षण दिया गया था। हम यहाँ अपने श्रोताओं को बता दें कि 21 लापता युवाओं के परिवार जो है पुलिस से संपर्क अब तक कर चुके हैं केरल में।
जी, बहुत बहुत शुक्रिया अखबारों की समीक्षा के लिए दिलनवाज। और अब रियो ओलंपिक की चर्चा करते हैं। रियो ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों की नाकामी का सिलसिला कल भी जारी रहा। निशानेबाजी में हिना सिद्धू, मानवजीत सिंह संधू और कैनन चिनॉय पदक पर निशाना नहीं साध सके, वहीं महिला हॉकी टीम ने भी जैसे तैसे जापान को बराबरी पर रोका। सुनिए रियो से वरिष्ठ खेल पत्रकार नॉरिस प्रीतम की रिपोर्ट।
बीबीसी ओलंपिक्स रियो अपडेट।
भारतीय खेमे में रविवार उतार चढ़ाव का दिन था। दिन की शुरुआत खराब हुई जब गुआंगजू एशियन गेम्स की रजत पदक विजेता हिना सिद्धू 10 मीटर एयर पिस्टल में क्वालिफाई करने से चूकी। ये लगातार दूसरा दिन था जब निशानेबाजों ने निराश किया। इस बीच भारतीय महिला हॉकी टीम अपने पहले मुकाबले में जापान से 2-2 गोल से बराबर पर रही। 36 साल के बाद ओलंपिक में खेल रही भारतीय टीम हाफ टाइम पर 2 गोल से पिछड़ रही थी, लेकिन दूसरे हाफ में टीम ने शानदार प्रदर्शन करके मैच बराबर कर दिया। रानी रामपाल और लिलिमा मिंज ने 1-1 गोल किया। उसके बाद नंबर आया भारतीय महिला तीरंदाजों का। बिगड़ते मौसम और तेज हवा के बीच दीपिका कुमारी, लाइश्रम बोम्बियाल देवी और लक्ष्मी मांझी ने कोलंबिया को 5-3 से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया, लेकिन बाद में सेमीफाइनल में जाने से चूक गईं, जब एक कांटे के मुकाबले में रूस ने भारत को टाई ब्रेकर में 5-4 से हरा दिया। इस मैच में भारत की नंबर 1 खिलाड़ी दीपिका कुमारी का प्रदर्शन खराब रहा।
मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश किया, अब नहीं लगा तो ऐसा नहीं कि मैं नहीं मारना चाह रही हूं, ऑफ कोर्स मैं भी मारना चाह रही हूं, अब लग नहीं रहा 10 के आसपास घूम रहे तो।
लंदन में पिछले ओलंपिक खेलों में भी दीपिका फ्लॉप रही थी, तब भी मौसम खराब था।
हाँ, लंदन में इतना हवा नहीं था, ये तो बहुत ज्यादा ही हवा है यहाँ पे बॉडी बहुत हिला दे रहा है।
अफसोस ये रहा कि वर्ल्ड चैंपियन टीम के खिलाफ बोम्बलाया देवी ने शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन वो अपनी टीम को हार से ना बचा सकी। शाम होते होते भारतीय खेमे की निगाहें एक और महिला खिलाड़ी पर टिकी थी, लेकिन जिम्नास्ट दीपा कर्माकर को फाइनल में पहुंचने के लिए अभी इंतजार करना पड़ेगा। इंतजार तो करना पड़ेगा ओलंपिक चैंपियन अभिनव बिंद्रा और गगन नारंग का भी, जो सोमवार को 10 मीटर एयर राइफल प्रतियोगिता में उतरेंगे। साथ ही भारतीय पुरुष हॉकी टीम खेलेगी जर्मनी से, जो एक कड़ा मुकाबला होगा। नॉरिस प्रीतम, रियो ओलंपिक्स, ब्राजील।
बीबीसी ओलंपिक्स रियो अपडेट। बीबीसी।
आज रियो ओलंपिक खेलों में भारत के निशानेबाज अभिनव बिंद्रा अपने जीवन का आखिरी निशाना लगाएंगे और फिर अपनी राइफल खूंटी पर टांग देंगे। आज के दिन पदक की एकमात्र उम्मीद उन्हीं से है। पुरुष हॉकी टीम भी आज मजबूत टीम जर्मनी के खिलाफ अपनी परीक्षा देगी। कल से भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीसरा टेस्ट मैच भी शुरू होने वाला है। इन तमाम खबरों को समेट कर आप तक पहुंचा रहे हैं आदेश कुमार गुप्त, खेल और खिलाड़ी में।
खेल और खिलाड़ी कार्यक्रम के साथ मैं हूं आदेश कुमार गुप्त। कार्यक्रम की शुरुआत रियो ओलंपिक खेलों से। रियो में जारी 31वें ओलंपिक खेलों में आज भारतीय खिलाड़ी पुरुष हॉकी, निशानेबाजी और तैराकी के महिला और पुरुष मुकाबलों में अपना दमखम दिखाएंगे। आज भारतीय हॉकी टीम पी श्रीजेश की कप्तानी में साल 2012 के लंदन ओलंपिक की चैंपियन टीम जर्मनी के खिलाफ उतरेगी। इससे पहले भारत ने ग्रुप बी के अपने पहले मुकाबले में आयरलैंड को बेहद संघर्ष के बाद 3-2 से मात दी थी। दूसरी तरफ जर्मनी ने अपने पहले मुकाबले में कनाडा को 6-2 से हराया। वैसे भारत ने पिछले दिनों चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी में जर्मनी को 3-3 से बराबरी पर रोका था। अगर भारत ने वैसी ही लय हासिल कर ली तो फिर कहना ही क्या। लेकिन भारत के पूर्व कप्तान जफर इकबाल चेताते हैं कि भारत को क्वार्टर फाइनल में पहुंचने के लिए बेहद संभल कर खेलना होगा।
ये नहीं है कि आपने जर्मनी से ड्रॉ किया है, ऑस्ट्रेलिया से ड्रॉ किया तो यू कैन डू द सेम थिंग अगेन। मगर हो सकता है कि यू कैन डिफीट देम आल्सो, बट पॉसिबिलिटी ये है कि इट्स अ हार्ड टास्क कि आप पोडियम पे पहुंचे।
लेकिन आज भारत की नजरें रहेंगी अभिनव बिंद्रा पर। अभिनव बिंद्रा 10 मीटर एयर राइफल में निशाना साधेंगे। साल 2004 में बीजिंग ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले अभिनव बिंद्रा आखिरी बार राइफल थामेंगे। वो पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि इसके बाद वो शूटिंग रेंज पर नहीं उतरेंगे।
End of the day, आप जब ओलंपिक्स में जाओ, यू आर शूटिंग फॉर योर लाइफ, यू आर प्लेइंग फॉर योर लाइफ, बिकॉज आप उसी दिन की इंतजार में रहते हैं। एंड मैं स्पोर्ट में लगा हुआ हूँ, मैंने जिंदगी में और कुछ किया ही नहीं है। 8th August को मेरा कॉम्पिटिशन, एंड आई डोंट थिंक आई विल एवर होल्ड अ राइफल अगेन इन माई लाइफ।
अब देखना है कि क्या ओलंपिक खेलों से अभिनव बिंद्रा की विदाई पदक के साथ होती है या नहीं। निशानेबाजी में ही लंदन ओलंपिक के कांस्य पदक विजेता गगन नारंग भी 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में हिस्सा लेंगे। गगन नारंग रियो में 50 मीटर राइफल प्रोन और 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन में भी हिस्सा लेंगे। उन मुकाबलों के लिए अभी थोड़ा इंतजार करना होगा।
Looking forward to that and hoping that everything falls in place.
आज ही तैराकी में पुरुष वर्ग में भारत के साजन प्रकाश 200 मीटर बटरफ्लाई और महिला वर्ग में इसी स्पर्धा में शिवानी कटारिया भी स्विमिंग पूल में उतरेंगी। और अब बात क्रिकेट की। इंग्लैंड ने बर्मिंगम में खेले गए तीसरे टेस्ट मैच में कल पाकिस्तान को 141 रन से मात दी। पाकिस्तान के सामने जीत के लिए 343 रनों का लक्ष्य था, लेकिन उसकी पूरी पारी 201 रन पर पेविलियन लौट गई। उधर बुलावायो में न्यूजीलैंड और जिम्बाब्वे के बीच दूसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है, जहां कल दूसरे दिन का खेल समाप्त होने के समय जिम्बाब्वे ने बिना किसी नुकसान के 55 रन बना लिए थे। इससे पहले न्यूजीलैंड ने अपनी पहली पारी 4 विकेट पर 582 रन के स्कोर पर समाप्त घोषित की। वहीं भारत और वेस्टइंडीज के बीच कल से तीसरा टेस्ट मैच खेला जाएगा। वैसे जब भारतीय क्रिकेट टीम ने पहला टेस्ट मैच जीता और दूसरे टेस्ट मैच में भी उसकी पकड़ बेहद मजबूत थी, तब भारत के कप्तान विराट कोहली का पिच और मैच के परिणाम को लेकर ये कहना था।
हम लोग हमेशा यही प्रेफर करते हैं, रिजल्ट वाला विकेट हो। अगर आप अच्छा क्रिकेट खेलेंगे तो ऑब्वियसली आपका बेटर चांस है मैच जीतने का, और जो हमारा फोकस रहता है, आपको जितने मैचेस जीतेंगे उतना कॉन्फिडेंस मिलेगा एज ए टीम, हम हमेशा रिजल्ट के लिए देखते हैं।
अब विराट कोहली चाहे कुछ भी कहें, लेकिन वेस्टइंडीज ने दूसरा टेस्ट मैच बचाकर इस सीरीज में नई जान तो फूंक ही दी है। खेल और खिलाड़ी कार्यक्रम में आज बस इतना ही,
और कार्यक्रम की समाप्ति से पहले मुख्य समाचार एक बार फिर।
तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयब अर्दोगान ने इस्तांबुल में 10 लाख से अधिक लोगों की रैली को संबोधित किया है। अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति ने अगले महीने रियो में होने वाले पैरालंपिक खेलों में रूस के शामिल होने पर प्रतिबंध लगा दिया है। मैक्सिको के अधिकारियों का कहना है कि तूफान अर्ल के कारण आई बाढ़ और भूस्खलन से कम 38 लोग मारे गए हैं। सीरिया के अलेप्पो में सरकारी सेना की घेराबंदी तोड़ने के बाद विद्रोही गुट सीरियाई सेना की भारी बमबारी का सामना कर रहे हैं। माली में संयुक्त राष्ट्र के शांति बलों का कहना है कि उसका एक वाहन धमाके का शिकार हुआ है जिसमें एक सैनिक की मौत हो गई है और कम से कम 4 घायल हुए हैं। बीबीसी समाचार।
इसी के साथ नमस्कार भारत की सभा अब यहीं समाप्त होती है। आपसे हमारी अगली मुलाकात अब से थोड़ी ही देर बाद विश्व भारती में होगी। इस कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग दिया हेमंत कुशवाहा ने। तो अब अमरेश द्विवेदी को दीजिए अनुमति। नमस्कार।